अनजाने ही घर दबोचता है. टाइम इज इम्परसेप्टेबल, टाइम इज इम्परसेप्टेबल. देवामृत स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे कई दिन पहले हमारे मंदिर में, उन्होंने अच्छा बोला, काल को हम देख नहीं पाते पर इतना देखते देखते चला जाता है वो, देखते देखते एक दिन चला गया, एक साल चला गया, पांच साल चला गया, पचास साल चला गया, ऐसा चला जाता है. अगर थोड़ा होशियारी से ध्यान करके हम नहीं देखे कि अरे समय अव्यर्थ कालत्वम, भक्त जो है काल को हमेशा सामने लक्ष्य में देखते रहता है, उसको खोता नहीं है, जीवन का जो लक्ष्य है उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, खोता नहीं है वो, फोकस को खोता नहीं हो. पर जो कम बुद्धि वाला है वो चीजों में इतना मग्न हो जाता है कि प्लान नहीं करता. एक तो फोकस नहीं है, अगर फोकस है तो भी प्लान करना जरूरी है कि मेरे को समय मेरे पास इतना है. जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, समझ लो आप कोल्हापुर से बंबई जा रहे हो और आपको एक खास मीटिंग के लिए वहां जाना है और आपके पास गाड़ी है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए मैं कहां जा रहा हूं गाड़ी चलाने से पहले, कि मुझे बंबई पहुंचना है कल सुबह 7 बजे से पहले. और दूसरा, अभी 8 बजा है और 7 बजे, यानी मेरे पास इतना घंटा बचा है, मेरे को इतना डिस्टेंस जाना है और मेरे को यहां पहुंचना है इस समय के अंदर. अगर यहां से निकला हूं और इतना मेरे पास समय है और इतना दूर जाना है तो हर एक घंटे में कम से कम इतना इतना तो आना चाहिए. ऐसा नहीं कि घूमते फिरते 8 घंटे के बाद भी इधर ही है और 2 घंटे में इतना पहुंचना है. 20% रास्ता सिर्फ 80% समय में गया और 80% रास्ता 20% में नहीं हो पाए, तो मग्न हो जाना मतलब खो बैठना उस समय. ऐसे ही बातचीत करते कोई रेस्टोरेंट में खड़ा किया, खाते पीते सोते बैठ ही भूल ही गए, अब बाद में 6 बजे पता चला कि अभी तक हम लोग पूना में ही है, अब पहुंचना है 7 बजे बंबई में. तो इस तरह से एवं गृहेषु सक्तानाम. तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर से सिस्टमेटिकली कैटेगराइज करते हैं और समझाते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से इस घरेलू मामले में लिप्त होकर और इसी चीजों के ध्यान में व्यस्त हो जाता है, उसके विचार कैसे होते हैं. अभी तो मैं खुश हूं, धृतराष्ट्र कह सकता है राजमहल के सब ठीक ठाक है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, अभी मैं खुश हूं. युधिष्ठिर कितना प्रेम से मेरे से बातचीत करता है, इतना प्रेम से मेरा देखभाल कर रहा है. युधिष्ठिर का कर्तव्य वो देखभाल करेगा, राज्यपाट फर्स्ट क्लास है, आराम है, तो मैं खुश हूं और मेरा बैंक बैलेंस जो है एकदम सही है, जितना चाहिए उतना ही है, कोई तकलीफ नहीं है, तो सिक्योरिटी है मेरे पास. अभी आई कैन गिव माई चिल्ड्रन इनफ एस्टेट, सब बच्चों को मैं सेटल करने के लिए सबको दे दिया हूं, उसको घर मिल गया, उसको लैंड मिल गया, उसको ये मिल गया, गाड़ी भी सब दे दिया, अच्छा एजुकेशन दे दिया हूं. आई एम नाउ सक्सेसफुल, सब सेटल हो गया, सब कर दिया काम मैंने, और अब मैं आराम से उसमें रमण करूंगा. द पुअर बेगर सन्यासीज डिपेंड ऑन गॉड बट कम टू बेग फ्रॉम मी, देयरफॉर आई एम मोर देन द सुप्रीम गॉड. ये सन्यासी लोग कहते हैं कि वो भगवान के ऊपर निर्भर है पर मेरे पास आते भीख मांगने के लिए, डोनेशन के लिए, तो मैं एक्चुअली भगवान से भी श्रेष्ठ हूं. तो ये उनके विचार हैं. एक्चुअली वो मानसिक रूप से लगने लगता है सब ठीक ठाक है, सब स्मूथ चल रहा है हमारा, और उसके कारण ढीलापन आ जाता है और कभी कभी तो पागलपन हो जाता है वो ढीलापन. ढीलापन एक बात है, पागलपन मतलब पूर्ण रूप से मग्न, जैसा धृतराष्ट्र की स्थिति हुई है, पूर्ण रूप से भूल गया है उसकी परिस्थिति क्या है, उसको याद दिलाना पड़ता है. पर वो मोह क्या है और वो सत्य क्या है, ये उनके विचार हैं. उसके विचार ये है कि मैं एकदम ठीक ठाक हूं, सुखी हूं, सब ठीक ठाक है, बच्चे भी ठीक ठाक, सब कुछ ठीक है. पर असलियत क्या है कि हमें एक क्षण नहीं मिलेगा उतना जितना भगवान ने हमारे लिए रखा है. एक सेकेंड हर एक के लिए निर्णय है, काल जो है निर्णय हो गया है कि इतना साल, इतना दिन, इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड, एक सेकंड ज्यादा नहीं कम नहीं, और हमें मालूम नहीं कब है वो, एक सेकंड एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हम लोग। दूसरा, मनुष्य जीवन का हर एक क्षण भले आप लाखों सोने की सुवर्ण मुद्राएं दे दो पर खरीद नहीं सकते। आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, एक क्षण आयु आप खरीद नहीं सकते, फिक्स हो गया है। और तीसरा है, हर एक क्षण अंततः सबसे बड़ी समस्या जो है मनुष्य जीवन इस भौतिक संसार का, उस समस्या का हल करने के लिए ही है और कुछ नहीं। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है हमारी समस्या का हल करना। तो हर क्षण सही उपयोग कैसा हुआ कि उस समस्या के हल कर रहे हैं कि नहीं, उस हल की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं। और कौन सी समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, ये एक्चुअली बढ़ रहे कि नहीं। इसीलिए जब विश्वामित्र आए जनक महाराज से मिलने, तो जनक महाराज ने विश्वामित्र को एक ही प्रश्न पूछा कि जो पुनर्जन्म का चक्र है उससे तुम उसको जय कर रहे हो कि नहीं, आर यू विक्टोरियस और नॉट, उसको जीत रहे हो कि नहीं, ये लड़ाई है, संघर्ष है, उस संघर्ष में कितना प्रगति हुए हो, जीत हो रही कि नहीं तुम्हारी। अंततः जीवन का उद्देश्य वही है। तो वो लक्ष्य भूल जाते हैं somehow, और माया इतनी प्रभावशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि जितना भी सुनो, क्योंकि माया का स्वरूप है भुलापा। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मुझे सब कुछ याद है, तू भूल गया है बस। और प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, यही है एक भगवान और उनके शुद्ध भक्त और बद्ध जीवों में, जो बद्ध अवस्था में, मतलब किससे बंध गए, माया से बंध गए। और माया का स्वरूप, मुख्य स्वरूप क्या है, भुलाना। भगवान कभी नहीं भूलते कोई भी चीज, सब कुछ जानते हैं वो, कभी भूलते नहीं। और एक शुद्ध भक्त भी कभी नहीं भूलता। प्रभुपाद जी इतने तकलीफ क्यों कर रहे थे, बोलते आई एम एन ओल्ड मैन, आई कैन गो अवे एट एनी टाइम, देयरफॉर आई शुड डू ऑल दिस, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते थे वो। एक प्रगतिशील भक्त का लक्षण है, हर एक क्षण वो देखता है उसका सदुपयोग हुआ कि नहीं, मतलब पुनर्जन्म को जीत रहा हूं कि नहीं, वो पास जा रहा हूं कि नहीं। पर स्वभाव है इस भौतिक जीवन का, बद्ध अवस्था का, क्या बोलते हैं, शरीर यानी जड़, आत्मा यानी चेतना। जिस हद तक आदमी शरीर के स्तर पर रहता है जड़ है, और जड़ यानी भूल जाना, और जिस हद तक चेतना चेतन स्तर पर आता है कभी भूलता नहीं है। पर स्वाभाविक रूप से हम भूल जाते हैं, और इसीलिए बताया गया हमको नित्यम भागवत सेवया। साल में एक बार सुनने को क्यों नहीं बोला, क्योंकि पिछले जमाने में ऐसे थे लोग, एक बार सुन लिया तो बस कभी भूलते नहीं थे। अभी हम लोग दो घंटे भी याद नहीं, दो घंटे के बाद भूल जाते हैं हम लोग। इसीलिए बोलते नित्यम भागवत सेवे, हर रोज याद दिलाना जरूरी है हमको कि लक्ष्य क्या है हमारा, कहां जाना है हमको, कहां है, कितना दूर, कितना जगह, कितना समय बाकी है। तो सबसे बड़ी मूर्खता क्या है, ये मूर्ख लोग भूल जाते हैं समस्या को, समस्या को भूल जाते हैं, मतलब लक्ष्य नहीं क्लियर है, लक्ष्य को भूल गए, इतने बिजी हो गए कि लक्ष्य देख नहीं रहे। और दूसरा, उनको मालूम ही नहीं है कि समस्या का हल कैसा किया जाए। एक तो भूल जाना, एक तो मालूम ही नहीं होना कि समस्या का हल क्या है, बल्कि वो इतने बद्ध हो जाते हैं घरेलू मामले में कि बिना जानते ही समय चला जाता है, और बाद में पछताते हैं, अरे अरे बहुत लेट हो गया। और बाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक निरासक्त गृहस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है, घर में रहना कोई बुरी बात नहीं है, पर निराशक तो होकर रहना, लक्ष्य को नहीं भूलना और लक्ष्य की ओर अग्रसर होना नहीं भूलना, उसका लक्षण क्या है? ऐसे जो मोह है वो कभी उसको बांध नहीं सकती जो हमेशा भगवान की भक्ति में जागृत है। भगवान गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जो एक बद्ध जीव के लिए सोने का समय है वो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए जगने का समय, और जो उनका जगने का समय है इनका सोने का समय। अलर्ट, अलर्ट यानी हमेशा चौकन्ना रहना। किस चीज में चौकन्ना रहना? के लक्ष्य और उसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं कि नहीं, ये चौकन्ना होना हमेशा जरूरी, हमेशा याद रखना चाहिए हमारा लक्ष्य क्या है, उसकी ओर अग्रसर हो रहे कि नहीं। पर दुर्भाग्यवश बद्ध व्यक्ति उस चीज में लक्ष्य नहीं रखता, क्या बोलते हैं, अलर्टनेस, चौकन्ना नहीं रहता, इन चीजों में चौकन्ना रहता है। दो पैसा भी ठीक वेस्ट नहीं हो जाना चाहिए, थोड़ा पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होना, वेरी गुड, अच्छी बात है। कितना चौकन्ना रहते हैं आप कि एक एक पैसा भी ठीक से उपयोग होना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होना चाहिए, कितने चौकन्ने रहते हैं हम लोग। और जिस चीज में चौकन्ना होना उसमें सो जाते हैं हम लोग। या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें वो जागृत रहते हैं। ये भी खर्चा नहीं होना चाहिए, फालतू नहीं जाना चाहिए, समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये से 10-10 चीज एक साथ कैसे करेंगे, तो चौकन्ने रहते हैं उसमें। पर जिस चीज में चौकन्ना रहना उधर सो जाते हैं। और एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का दूसरा लक्षण है, जहां वो जागृत रहना है वहां बहुत जागृत रहता है, बहुत चौकन्ना रहता है। और इन चीजों में इट इज नॉट नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट नहीं बट इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब हुआ तो हुआ, हुआ थोड़ा खर्चा होता है, कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इस जगह में इन्वेस्ट कर सकते, चलो यहां गया तो गया, छोड़, थोड़ा इनडिफरेंस, उदासीन। ऐसा नहीं है कि वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, पर कुछ चीजों में उदासीन, भले हो गया जाने दो ना, अदरवाइज पेनी वाइज पाउंड फूलिश, अंग्रेजी में कहावत है, पेनी वाइज छोटी छोटी चीजों को बड़े जागृत रहते हैं पर बड़े चीजों में सो जाते हैं। तो ये हमेशा जागृत रहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार में हमेशा जागृत रहता है, उसे भले वो घर में रहे भले वो संन्यास लेके वन में रहे, उसको कभी माया बांध नहीं सकती, क्योंकि हमेशा जागा है वो। आदमी को जब सोए हुए समय में उसको पकड़ के मार दे सकते हैं, पर जागा हुआ रहता है तो उसको अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है। और जागा हुआ नहीं चौकन्ना है, जैसा कबड्डी खेलने में जाता है आदमी, उसको मालूम है कि मैं एनिमी के टेरिटरी में आ गया हूं, मतलब अभी कोई भी पकड़ सकता है मेरे को। जैसा एक आदमी जब लड़ाई के लिए जाता है, युद्ध के लिए जाता है बंदूक लेके, उस समय सोता नहीं, वो सो नहीं सकता। वो आप ऐसे एरिया में है जहां कहीं से भी कोई भी आक्रमण कर सकता है, तो कैसे हम लोग चौकन्ना रहते हैं? हमेशा कोई भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी मार सकता है, हर एक चीज में चौकन्ना रहते हैं हम लोग। इसमें भी बॉम्ब हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। चोर लोग को मालूम है, एक बार कलकत्ता में मैं गया, हमें बताया हुआ था, मुझे बताया था लोगों ने, हावड़ा में ऐसे लोग बहुत होते हैं, बहुत केयरफुल होना चाहिए। मैं बोला मालूम है, कितना कहानी मैंने सुना है, सब मालूम है। और मैं खड़ा हुआ था, 8 लगेज था हमारा, और हमने, मेरे साथ देवानंद पंडित प्रभु थे, तो हावड़ा में उतरे, हावड़ा से मायापुर का टिकट लेना था, मतलब नवद्वीप के लिए जनरल लोकल ट्रेन का, तो वो टिकट लेने गए, बोले थोड़ा ध्यान देखो मैं वहां जाता हूं। थोड़ा सुबह का समय था, 6 बजे पहुंचे थे, कोई नहीं था उधर, प्रैक्टिकली खाली था स्टेशन में, कुछ लोग इधर उधर खड़े थे बस। तो प्रभु जी गए थे, मैं देखा ऐसे खड़ा था, फिर एक आदमी मेरे पास आया, महाराज मैंने देखा, बोले आपका पैसा है क्या, बोल के चला गया वो बस। दस रुपए का नोट, नहीं आठ दस दस रुपए का नोट, एक एक फीट दूरी पे, एक दस रुपया फिर एक फीट दूरी पे और एक आठ फीट के अंदर दस दस रुपए का नोट ऐसा गिरा हुआ। उसने बोला कि आपका है क्या, बोल के चला भी गया हो। तो मैं बोला अरे इतना पैसा, मैं बोला कहीं देवानंद पंडित प्रभु जाते जाते गिरा के चले गए क्या। मैं बोला अरे ऐसा कैसा गिरा के चला गया। तो मैं गया और एक एक उठा रहा हूं, एक उठाया, दो उठाया, तीन उठाया, चार पांच छह सात आठ, पीछे मुड़ के देखा दो सूटकेस गायब। आठ सेकेंड मतलब आठ सेकेंड चौंकाना नहीं रहा उसको, अगर सामने खड़ा उठा के भागे तो बड़ा मुश्किल है। तो सिर्फ थोड़ा एक, उसको सिर्फ दो सेकेंड के लिए लापरवाही चाहिए बस, आठ सेकेंड मिल गया उसको तो कम है। एक मैं तो एक खुशी से गिन रहा था एक के ऊपर एक, आठ गिना फिर पीछे मुड़ के देखा कौन ले गया वो भी नहीं मालूम, क्योंकि वो सामने ऐसा रखा होता ऐसे जा रहा था, मुझे नहीं मालूम कितने लोग आते जाते रहते। तो सामने एक व्यक्ति मतलब मेरे से दस फुट दूर एक आदमी खड़ा है, सिर्फ ऐसा खड़ा है बस, शायद वो भी उन्हीं का टीम का ही है क्योंकि अगर मैं उसके पीछे भागा तो यहां से दो उठा के जाएगा। वो चुपचाप खड़ा हुआ देख रहा है। मैंने पूछा किसी ने देखा क्या, सूटकेस कर रहा है कुछ नहीं मालूम, जैसे ऐसा कर रहा है बस। तो मेरे को समझा भी नहीं पर, और वो नरसिंह देव के लिए अपने मायापुर में भगवद गीता कोर्स करने के लिए प्रोजेक्टर था, और प्रोजेक्टर में सारा स्लाइड शो मेरे मतलब कई साल से बनाया हुआ स्लाइड शो, स्लाइड सब उसके अंदर था। तो मेरे को लगा कोई भी सामान ले जाए, धोती कुर्ता ले जाए चलेगा, भगवद गीता ले जाए दूसरे मिल जाएगा, पर ये प्रोजेक्टर और स्लाइड जिसके लिए मैं जा रहा हूं मायापुर सात दिन के लिए, इतना बुरा लगा मेरे को कि कहां गया वो सूटकेस, मालूम ही नहीं हो रहा है। और मेरे से कम 50 मीटर दूर वो जा रहा था, पर सौभाग्यवश 100 मीटर दूर से एक आदमी ने देखा क्या हो रहा था, मैं यहां से चुन रहा हूं और ये उठा के जा रहा है, वो कलकत्ता वाला आदमी था। तो उसने वहां से सीधा उस पर आक्रमण किया। तो जैसे उसको पता चला कि कोई आ रहा है, सूटकेस छोड़ा वहां से भाग गया, और ये आदमी आया लेके आया सूटकेस, बोले महाराज होशियार रहो कलकत्ता है ये रखा। तो पर मेरे को लगा ये भी चोर हो सकता है, क्या मालूम वो रखेगा और मैं सूटकेस खोलने गया तो और ज्यादा सूटकेस ले जाएगा। इतना मैं एकदम भयभीत हो गया, बोले किसको विश्वास करूं किसको नहीं, इसको देख रहा हूं तो वो भाग रहा है, उसको ला रहा है, ये पकड़ के ला रहा है। बोले एक लाख के चार ले जाने के लिए योजना है क्या इन लोगों का। तो बोला हाँ ठीक है तेरे दूर खड़े रहो, उसको उसको बोला दो। और खोला पहले मैंने, अंदर है कि नहीं कुछ, खोल के देखा तो सब कुछ था। और ये आदमी जो खड़ा हुआ था मेरे सामने वो आके बोल रहा है कितना पैसा दिखाओ कितना पैसा लगाओ। मैं बोला तेरे को क्या इससे मतलब, निकल यहां से, और पूछ रहा था तो बोलने नहीं हुआ तेरे को। और उसके बाद सब सूटकेस को एक के ऊपर एक रखा और बैठ गया मैं, बोला बात। और उसके बाद एक दीवार के पास जाके बैठ गया ताकि इधर से उधर से कोई आए नहीं, और पांच मिनट तक बैठा रहा। और वो पांच मिनट में इतना चौकन्ना था कि एक मक्खी भी आके सूटकेस में नहीं बैठ सकता इतना। फिर प्रभु जी आए, देवानंद पंडित प्रभु, वो आने के बाद तुरंत मेरे को बहुत ये हो गया भाई, और तगड़े आदमी है वो, बोले मिलिट्री वाले, बोले हाँ ठीक है अभी चलो उठा के जाते हैं। फिर मैं बोला पंडित जी ऐसा मत जाना, ये होड़ा में सही बात है। तो मैंने सुना था ऑफकोर्स, जैसा मैं मायापुर पहुंचा सबसे पहले नरसिंह देव के पास गया और 80 रुपया उनके हुंडी में डाल दिया बोले ये बहुत खतरनाक है, मेरे पैर में विजय में रहेगा, मेरा दिमाग फिर जाएगा, कुछ और उठा लूंगा मायापुर में किसी और का। तो इतना सुना था मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं सुना था सब होशियार, पर उस समय दिमाग फिर गया, ऐसा सोचना था कि आठ ऐसा कोई डाल के जाता है ऐसा, और वो अगर क्यों नहीं उठाया वो मेरे को बोल के। अगर ठंडे दिमाग से अभी सोचूं तो सब उल्टा लग रहा है अभी, ऐसा कैसा हो ही नहीं सकता, इतना पैसा हो कोई देखा ही नहीं हो, क्योंकि 10 मिनट पहले मैं देखा एक बूढ़ी लेटी हुई थी वो चली गई, उस समय नहीं था पैसा। अभी सोचने पे लगता है कि सब मूर्खता था उस समय, पर उस समय नहीं आता। तो इस तरह से माया को मालूम है किस तरह से आना है ताकि वो फंस जाए, जैसे इन चोर लोगों को मालूम है कैसा उसको थोड़ा भुला देना चाहिए ताकि छीन ले। मनुष्य होने का सबसे बड़ा धन है समय, और वो फ्री विल, स्वतंत्र, स्वतंत्र रत्न। आचार्य कहते हैं स्वतंत्र रत्न, सबसे बड़ा रत्न है हमारा स्वतंत्रता है। और उसे मालूम है, माया को एग्जैक्टली मालूम है कि इसको सब मालूम है, ये हर रोज भागवतम सुनता है, सब मालूम है, ये चीज इसकी दुर्बलता है, इसमें थोड़ा ऐसा करके आर्ट दिखाऊंगी 10 रुपए का तो ये भूल जाएगा। और देखती है कि ये अगर दो लोग हम लोग खड़े होते तो कभी नहीं आती वो, अभी वो व्यक्ति कभी नहीं आता, मालूम है कि वो व्यक्ति गया हुआ है। तो माया को भी मालूम है कि भक्तों के संग में है तो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आसपास के भगत लोग याद दिला देंगे, ए इधर देख, ऐसा कभी होता है क्या, रहने दे उसको, 80 नहीं 8000 का नुकसान हो जाएगा। तो देखती है कि थोड़ा अकेला है, कोई नहीं है, और वो भी उनके ग्रुप के साथ, इधर भागा तो इधर से गायब, उधर भागा तो इधर से गायब। तो इस तरह से स्वतंत्र रत्न और जागृत होना, वो जागृत हटा देती है, किसी तरह से भुला देती है। तो जागृत होना एक इस व्यक्ति का कर्तव्य है। और दूसरा, वो मुकुंद के भक्ति, चरण कमलों की भक्ति में दृढ़ हैं और स्थित हैं। क्यों? मुकुंद ही हमको मुक्ति दे सकते हैं। तो एक, हमेशा वो जागरूक रहते हैं, मतलब जागृत रहते हैं अपने लक्ष्य की ओर, और कितना मेरे पास समय है, किस तरह से वो लक्ष्य की ओर पहुंचना है, उसमें वो लापरवाही नहीं करते। और दूसरा, वो मुकुंद के चरण कमलों की भक्ति में दृढ़ रहते हैं। माम एकम शरणम रज, क्योंकि सिर्फ भगवान मुकुंद ही हमें मुक्ति दे सकते हैं, और कोई नहीं, शिव जी नहीं, ब्रह्मा जी नहीं, देवी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ मुकुंद। तो मुकुंद के चरणों में स्थित रहते हैं। फिर इस भौतिक संसार के सुख जो मायावी है और जो क्षणिक है, इसमें आसक्त नहीं होते, वो आकर्षित नहीं होते। स्वाभाविक रूप से हम आकर्षित हो जाते हैं, जैसे 8 रुपया 8 नोट देखा मैं, ऑफकोर्स मेरे को इच्छा नहीं थी कि 80 रुपया मिलेगा, पर फिर भी अगर और कुछ वहां रखता तो शायद मैं आकर्षित नहीं होता। कपड़े के टुकड़े रखता तो किसका कपड़ा, मैं थोड़ी, मेरा कपड़ा है, पैसा कोई भी किसी तरह से उपयोग कर सकता है, साधु भी उपयोग कर सकता है उसका, सबके लिए उपयोग है। तो भौतिक सुख भी ऐसा है जो लगता है, जो मायावी है पर और क्षणिक है, तो उसे आकर्षित नहीं होते। और जो व्यक्ति इन चीजों को अंदर बाहर से अच्छी तरह से जानता है, कौन जानता है, जिसने शास्त्रों का सुना है, साधुओं का सुना है, सदगुरु के से श्रवण किया है, वो इन चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भले ठीक है, होने दो ना, मेरे को क्या लगता है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं उसे। पांचवें अध्याय का 22वां श्लोक भगवद गीता में, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधः। संस्पर्शजा भोगा, ऐसा भोग जो क्षणिक है, जो इंद्रियों और विषय के स्पर्श से आने वाली वस्तु है, सारे इंद्रियों से, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग धातु है। दुख योन एवते, योनि यानी जहां से उत्पन्न होता है, दुख योनि, जो सुख है ये भौतिक सुख, दुख योन एवते, एक साधु ने अच्छा वर्णन किया, बोले आप धार तलवार ले लो और धार तलवार की जो नोक है उसके ऊपर एक बूंद मधु शहद धार तलवार जो एकदम धार है और उसके धार के ऊपर एक बूंद शहद डाल दो, चाटने को बोलो उसको, सुख है कि नहीं? पर दुख योनयेवते, सुख मिल रहा है पर वो एक्चुअली दुख का कारण है। एक बार परम पूज्य राधाना स्वामी ने महाराज ने अच्छा बोला, बोले इन एवरी मेटीरियल हैप्पीनेस देर इज ए पोटेंशियल मिजरी। दुख योन है, भगवान कह रहे हैं ये, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है उनको मालूम है कैसे सृष्टि बनाया है। संस्पर्श जाप होगा, इंद्रियों और विषय के जो संपर्क में आने वाले सुख है, दुख योनय एवते, और तथापि सुख भी लगा, आद्यंत वंत कौंतेय, उसका आदि है उसका अंत है। और न तेषु रमते बुध, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे क्षणिक आनंद के लिए, उस उदाहरण के लिए अगर दरवाजा खिड़की सब बंद कर दिया जाए और इतना बड़ा एक बॉम्ब वहां रख दिया जाए जो पूरा इसमें टुकड़े टुकड़े कर देगा और सबको बोला जाए प्रिय मित्रों ये बड़ा बॉम्ब है, ये आधे घंटे में फूटने वाला है और एक एक टुकड़ा कुछ नहीं मिलेगा और सामने बड़ा फीस्ट है, आप लोग भोग करो इसको, आनंद लो। आदमी सोचेगा पहली खिड़की तोड़ के बाहर निकलना है मेरे को क्योंकि ये फूटने वाला है कभी भी, उस समय मैं कैसा खाऊं? तो आद्यंतवंत कौनते नतेश्वर मते बुध, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ऐसा सुख प्राप्त करना चाहता है, ब्रह्म सुख जो कभी खत्म ही नहीं हो, ऐसा सुख मुझे चाहिए। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, पूरा पहाड़ खोदा और एक चूहिया निकली बस खजाने के बदले, तो इतना सारा क्या बोलते हैं परिश्रम, इतना सा सुख और वो भी दुख यो नहीं एवते। वो चाहिए कि इतना सा बस तकलीफ, एक मनुष्य जीवन दे दो बस भगवान के लिए, अनंत काल तक सच्चिदानंद वैकुंठ धाम में निवास। कौन अच्छा बिजनेसमैन है बताइए? करोड़ रुपया डाल के 2 रुपये का फायदा या 2 रुपया डाल के करोड़ का फायदा? पर दुर्भाग्यवश जहां जागृत होना वहां सो जाते, तो हाँ उनको ऐसे तथाकथित भौतिक सुख के प्रति आकर्षित नहीं है। द इटर्नल जीवा कैन ओनली बी हैप्पी इन वैकुंठ फ्रॉम वेयर देयर इज नो रिटर्न। उसे मालूम है लक्ष्य क्या है, इसी जीवन के अंत में मुझे वैकुंठ जाना है। और वो कोई भी कितना भी भौतिक सुख हो उसको त्याग करने के लिए तैयार है परम सुख को प्राप्त करने के लिए। और अंत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि रियल ट्रांसेंडेंटलिस्ट आर हंग्री फॉर दिस हैप्पीनेस। सच्चे एक भक्त को जो जागृत है आत्मा के स्तर पर आत्म साक्षात, भूखा होना चाहिए। आप एक भूखे आदमी को, बहुत भूखा है आपके घर में आया, आप उसके चरण धोइए, उसको स्नान कराइए, उसको बहुत सुंदर फूल का हार लगाइए, चंदन लगाइए और उसका गुणगान कीजिए आधा घंटा, आप कितने महान हो। बोलेगा ये सब छोड़ो, कुछ खाने को दो मुझे, भूख लगा है। बोला नहीं, पहले मैं आपका सम्मान करूंगा, फिर आपका आरती करूंगा, धूप दीप नैवेद्य नहीं सिर्फ धूप दीप चामर करूंगा, सम्मान दे रहा हूं, गुणगान कर रहे हैं। बोले सब नहीं चाहिए मुझे, भूख लगा है। एक भूखे व्यक्ति को आप कुछ भी दे दो वो सुख नहीं है जब तक उसका भूख नहीं मिटेगा। इसी तरह से एक आध्यात्मिक व्यक्ति को उसका भूख क्या है, प्रेम के भूखे हैं सब लोग, ऐसा प्रेम अमर प्रेम अमर प्रेम चाहिए, सच्चिदानंद प्रेम। उसके संबंध में दूसरे प्रेम ठीक है पर उससे अलग वो भूख नहीं मिटा सकता। एक्चुअली वो भूख जो है भगवान के संबंध में थे वही भूख है हमारा, और वही एक चीज है जो हमारा भूख मिटा सकता है। तो युधिष्ठिर महाराज हैं उसी परिस्थिति में, पर वो जागृत थे। ये सब था, इतने सारा राजपाट, इतना ऐश्वर्य। जब भगवान समय न्यूज आया कि भगवान अभी धरातल छोड़ के चले गए, एक क्षण के अंदर युधिष्ठिर परीक्षित महाराज को बैठाए, चल पड़े। वो भी राजपाट में है, वही उस महल में है, और एक्चुअली वो राजा है। ये तो तथाकथित राजा थे, नाम के राजा थे, इसीलिए उसको मतलब व्यंग्य रूप से विदुर कहते हैं कि राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्चिमम भयम आगतम। राजन बोलते कौन सा राजन, नाम का राजा है तू, न तेरा राज्य है न तेरे प्रजा है। और इस तरह से सर्जरी कर रहे हैं, एक 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 करके पहले अंदर डाले, समय समय कैसा चला जा रहा है, दूसरा और थोड़ा अंदर घुसा है, आश्रय, तू युधिष्ठिर का आश्रय लिया है, तू महल का आश्रय लिया है, तू मन की शांति का आश्रय लिया है, ये सब नष्ट होने वाले, क्योंकि शरीर ही तेरा नष्ट हो जाएगा अभी थोड़े दिन में। पर फिर भी पूरा नहीं निकला था, तो लास्ट में और थोड़ा अंदर घुसा है। भीम का तू खा रहा है, जिनको मारने की तो कोशिश किया, जिसने तेरे सारे 100 पुत्रों को मारा, सबसे प्रिय दुर्योधन और दुशासन को फाड़ के फेंक दिया, ऐसे व्यक्ति कितनी धिक्कार है ऐसे तेरे जीवन पर, इतना तू निर्लज्ज हो गया है। तब जाके उसको थोड़ा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जाग पाया, तो धीरे धीरे करके अंदर से सर्जरी की, और सर्जरी करने के बाद प्लास्टर डाले, बोले कोई चिंता मत कर, धीर पुरुष बन जा अभी तू, बस उसके बाद तू नरोत्तम बनना। कल हम चर्चा करेंगे उसको थोड़ा भी विपरीत रूप से, धीर और कृपण, धीर, सन्यास और नरोत्तम, ये चार स्तर को प्रभुपाद जी बड़े अच्छे तरह से समझाते हैं, और किस तरह से नरोत्तम स्तर पर हरेक व्यक्ति को नराधम स्तर से नरोत्तम स्तर पर कैसे जाना चाहिए, बहुत सुंदर समझाते। तो इस तरह से ये जो भागवतम के इंस्ट्रक्शन है, जो धृतराष्ट्र प्रभुपाद लिखते हैं, पहले तो एक ही धृतराष्ट्र था, पर आज हर एक घर में धृतराष्ट्र भरे हुए हैं, और हमें बहुत सारे विदुर चाहिए। बेचारे विदुर कहां कहां किसके किसके घर जाएंगे। प्रभुपाद जी ऐसे विदुर थे, और उन्होंने बहुत सारे विदुरों को तैयार किया। हमार आज्ञा गुरु हो या तारो ही देश, जारे देखो तारे कहो, तो हमको भी विदुर बनना चाहिए, न कि धृतराष्ट्र बने, या कम से कम युधिष्ठिर बनना चाहिए। सब कुछ है, संसार में है, पर संसार के नहीं। और जब समय आया, हरिबोल तैयार है हम एग्जाम के लिए, तब हमारा जीवन सफल। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न या ठीक, हाँ, कल जयानंद प्रभु ने ये प्रश्न पूछा था, प्रभुपाद जी लिखते हैं एक्चुअली विदुर जी धृतराष्ट्र को शुद्ध भक्ति के बारे में बता सकते थे, पर उन्होंने देखा कि उसके योग्य नहीं है धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है, और इतना आसक्त है वो, जो बहुत आसक्त हैं उनके लिए थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए अष्टांग योग बताया गया है। अष्टांग योग में यम सबसे पहले निकलो, शुचौ देशे प्रस्ताप, घर से बाहर निकलो पहले, क्योंकि आग लगा रहे हो फिर पानी डाल रहे हो, आग लगा रहे हो पानी डाल रहे हो, आग लगाने के बाद पानी नहीं डालना चाहिए। पर अगर बहुत ही वीक है, एक आदमी बहुत वीक है, हमें मालूम है कि ये संग नहीं करना चाहिए, पर फिर भी वीकनेस है, जैसा एक भक्त बता रहे थे, कंठीमाला पहने सब कुछ है, पर उनको सिगरेट पीने का इतना आदत था शुरुआत में कि वो सिगरेट की दुकान से जाते थे तो खिंच जाते थे, वो सिगरेट खरीद लेते थे, कंठीमाला उतार के सिगरेट पी के फिर से कंठीमाला पहनते। फिर उन्होंने क्या किया, पैसा जेब में लेना छोड़ दिया, जब सुबह वॉकिंग के लिए जाते थे दुकान के सामने से गया तो पैसा लेना, फिर भी वो उधार लेना शुरू कर दिया, फिर वो जगह से जाना ही छोड़ दिया, दूसरे जगह से, दूसरे रोड से जाते थे, क्योंकि देखा तो फिर तकलीफ। तो ऐसे लोगों के लिए वो जगह से कम दूर हो जाओ, क्योंकि इतना आसक्ति है। तो धृतराष्ट्र खूब ज्यादा ही आसक्ति था, एक। दूसरा, वो उसने बहुत ही अपराध किया था पांडवों के प्रति, ऐसे ऐसे प्रकार के अपराध, विषाण, महाग्नि, पुरुषार्थ दर्शन, असत सभाया, सब में वो धृतराष्ट्र भी था, बल्कि वही योजना कर रहा था। और शुद्ध भक्तों के पर इतना इतना क्या बोलते हैं, अपराध करने के कारण बहुत मुश्किल था उस व्यक्ति उसको फिर से भक्ति में करने। भगवान यानी भगवान के भक्तों से भी प्रेम होना चाहिए, भक्तों से प्रेम नहीं था उसको, द्वेष था। पर क्योंकि वो लोग कुछ दे रहे थे इसीलिए वो जी रहा था, पर प्रेम नहीं था उसको। जिस प्रकार से दूसरों का पांडवों के प्रति प्रेम था, ऐसा प्रेम धृतराष्ट्र को नहीं था। अपराधी था, मारने की कोशिश कर रहा था, पर अभी आज परिस्थिति में लाचार अवस्था में उनसे निर्भर था, इसीलिए चुपचाप था। और तीसरी बात है, विदुर जानता था कि भगवान की जो इच्छा है वही होने वाली है। अगर भगवान चाहे तो कम से कम धीर स्तर पर आना चाहिए। जैसा उपदेशामृत में क्या कहते हैं रूप गोस्वामी, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान्यो विषहेत धीर सर्वामपि माम प्रतिबिंब से शिष्यात्। तो प्रभुपाद उसके इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, पहले धीर बनकर बाद में भक्ति बन भक्त बनना। तो ऑफकोर्स भक्ति करते करते धीरता भी आ जाती है, पर समय लगता है। पर इसके पास समय नहीं था अभी, तो कम से कम धीर बन जाओ पहले। पहले यहां से निकलो तुम बाहर, क्योंकि जब तक तुम यहां रहेगा तुमको इन चीजों का आश्रय लेगा। अब भगवान के ऊपर आश्रय होना सीखो, निकलो यहां से, समय कम है तुम्हारे लिए। पर प्रभुपाद जी की कृपा है कि उन्होंने जो तरीका दिया है, खास करके चैतन्य महाप्रभु, उस समय चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, नमो महावदान्याय, ऐसे लोगों को भी उद्धार करने वाला। पर प्रभुपाद जी की कृपा से चैतन्य महाप्रभु का संदेश दिया कि कहीं भी स्थिति में हो कम से कम इसको ले लो। और एक्चुअली प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे तात्पर्य में आज हम नहीं पढ़े, दो चीज वो लिखते हैं। एक, किन चीज पे आश्रय हो, भगवान के ऊपर आश्रय। तो भगवान के ऊपर आश्रय कैसे होना है, बोले एक, अपना प्रयास। अपना प्रयास मतलब भगवान का आश्रय लेने का जो कुछ अनुकूल से संकल्प हो, प्रतिकूल से वर्जन, जो जो अनुकूल है उसको स्वीकार करो, जो जो प्रतिकूल है उसको धीरे 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 छोड़ दो, जितना भी आसक्ति हो छोड़ दो, और जो अनुकूल है जितना भी तकलीफ हो उसको स्वीकार करो। ये अपना कोशिश, पर अपनी कोशिश से कुछ नहीं होने वाला, भगवान की कृपा। बस ये दो चीज के लिए कोशिश करो, भगवान की कृपा और अपना कोशिश। अनुकूल चीजों को संकल्प स्वीकार करो, प्रतिकूल चीजों को त्यागो। और तीसरा चीज कहते हैं प्रामाणिकता, सिंसियर एंडेवर अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु साधु शास्त्र। तो गुरु साधु शास्त्र के मार्गदर्शन पे प्रामाणिकता से अपनी परिस्थिति के अनुसार हम कोशिश करेंगे, अपनी कोशिश देखना। जैसे जीव गोस्वामी कहते हैं ना, भगवान ने जब दामोदर लीला में कि दो उंगली कम था, एक अपना प्रयास, दूसरा भगवान की कृपा। एक्चुअली अपना प्रयास भी कुछ नहीं है, कितना भी प्रयास कर लो कुछ नहीं होने वाला। पर जब प्रयास देखते हैं, प्रामाणिक प्रयास भगवान देखते हैं कि मैं मूर्ख हूं, मुझे नहीं मालूम, आप जो अनुकूल है वो करो मेरे जीवन में, मैं तैयार हूं, मुझे मालूम है मैं सुधरने नहीं वाला, आप पकड़ के खींचो, सिर्फ मुझे बुद्धि दो ये समझने के लिए कि आपकी कृपा है, उसको मैं नकारू नहीं, और मुझे शक्ति दो उन चीजों को सहन करने के लिए। क्योंकि बुद्धि नहीं होता हम बोलेंगे अरे ऐसा कैसा हो गया, भगवान को गाली देना शुरू करें, मैं मूर्ख हूं, आप ऐसी परिस्थिति में, मुझे मालूम है कि मैं अगर शरण आने की कोशिश करूंगा तो आप मेरे जीवन में ऐसी चीज बनाएंगे एग्जैक्टली वही टेलर मेड। परसों मैं बेलगाम में गया था तो ये डॉक्टर जो बोल रहे थे, बोले मैं रेडीमेड मेडिसिन देता ही नहीं हूं किसी को, तुम्हारी बीमारी के अनुसार ये पोड़ी इतना, ये पोड़ी इतना, ये खास बनाता हूं मैं, क्योंकि जनरल ये बीमारी के लिए ये बीमारी, वो मेडिसिन है, पर जब बेस्ट डॉक्टर क्या है, वो वैयक्तिक रूप से देखता है तेरा ये ज्यादा, उसके लिए खास दवाई बनाता है वो, बोलता है ये खास तेरे लिए और दूसरे के लिए नहीं, ये दूसरा कोई लेगा नहीं चलेगा। तो भगवान परमात्मा के रूप में जब प्रामाणिकता देखते हैं हमारे जीवन में, हम कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा इंतजाम करते हैं एग्जैक्टली टेलर मेड फॉर दैट पर्सन, एग्जैक्टली आपको फिट होगा और किसी को फिट नहीं होगा, किसी को ढीला होगा किसी को टाइट होगा, पर आपको परफेक्ट फिट, आप ही के लिए बनाया हुआ ऐसा प्रोग्राम, अमेजिंग। एक आश्रम में 10 लोग हैं पर ऐसा परिस्थिति करते हैं कि उसके खास लिए उसका हो रहा, दूसरे लोग कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पर इसको क्या हो रहा है मेरे जीवन में, एकदम प्योर शुद्ध हो जाता है सारा, वो रफ सरफेस करके एकदम चमकने लगता है। तो हमारी कोशिश और भगवान की कृपा और प्रामाणिकता, तीन चीज बोलते हैं, इसके ऊपर निर्भर हूं। और कहते हैं प्रभुपाद, क्योंकि ऐसा दिया है, धीरे धीरे इवेंचुअली ही वुड बिकम ए नरोत्तम, भले थोड़ा जीवन लग जाए, पर क्योंकि वो नरोत्तम के मार्गदर्शन में धीर के स्तर पर चला था, विदुर के कहने पर, एक्चुअली वो शरणागत हुआ था विदुर की, विदुर एक शुद्ध भक्त है, महाजन है वो, एक्चुअली महाजन हो ये नगर से पंथ था, तो इसीलिए वही बोल रहा हूं ना मैं, प्रभुपाद गारंटी बोलते हैं इवेंचुअली आफ्टर फ्यू लाइव्स ही वुड बिकम ए नरोत्तम, अभी नहीं इस जन्म में नहीं, क्योंकि ये अभी बाकी बचा है ना उसका अकाउंट क्लियर नहीं है, पर उसकी परिस्थिति अलग थी, कम से कम हम लोग शायद अपराधी नहीं है उतने जितना धृतराष्ट्र ने, किसी को मारने का प्रयास करना, सिस्टमेटिकली प्लान करना कि और किस तरह से एक लाक्षाग्रह बना के जाओ आप पिकनिक के लिए जाओ, आग लगा के खत्म करना, कैसा धूर्तता, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जो सरल है, सरल करिया मन, गाओ गाओ चैतन्य रघुण सरल करिया मन, सरलता होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होगा चलेगा, थोड़ा मूर्खता होगा चलेगा, धूर्तता नहीं चलेगा, डुप्लीसिटी, दिखाना कुछ और करना कुछ और। अब भगवान भी सबसे बड़ा चीट है, ही द ग्रेटेस्ट चीटर, भगवान को चीट नहीं कर सकते, बाहर से ऐसा रो रहे, अरे रे बेचारा मर गया, अंदर अंदर फुल्ले फूट रहे उसको, मर गए सारे पांडव मर गए बस, पर बाद में सुनाई दिया कि अरे कहां तो है वो लोग, एक राज्य में समृद्धि हो रहा है फिर से एकदम, तो इतना द्वेष जहां रखा है, जहां द्वेष है वहां भक्ति नहीं मिल सकती ना, द्वेष जो है भक्ति लता पे जहर डालने के बराबर है, और सेवा जो है वो अमृत पानी डालने के बराबर है, तो जड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ बढ़ेगा, पर अगर जहर डाल दिया तो पूरा पेड़ सूख जाएगा। तो ईर्ष्या होने के कारण कम से कम उस माइनस होने से न्यूट्रल में लाया, कम से कम जीरो में लाया, धीर पुरुष मतलब धीर, जीरो में लाना, जीरो के बाद पॉजिटिव अकाउंट, कम से कम तू जीरो पे आ जा। अभी अगर वो बोलते त्रिनादपि सुनी चेना तरोरी वसेषुना, युधिष्ठिर का पैर पड़ तू, क्या पढ़ता वो, पढ़ते वो धृतराष्ट्र प्रभु महान है भाई, व्यासदेव के पुत्र है, मामूली नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं भगवद गीता की शुरुआत में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मामका पांडव, मामका पांडव, मेरे और पांडव, मतलब वो द्वेष इतना था दुर्योधन के, मामका पांडवाश्चैव, देख नहीं पाए। यस, भगवान की कृपा हो। एक्चुअली नारद मुनि अपना उदाहरण इसलिए देते हैं भागवत में शुरुआत में कि मैं एक शूद्रानी का पुत्र था, दासी का पुत्र था, और हम भी हमारी स्थिति भी ऐसी है, कलौ शूद्र संभवा, वो भक्ति वेदांतों से मिले, हमको भी भक्ति वेदांत की कृपा मिल गई, पर उसके बाद क्या किया इसीलिए व्यासदेव बोलते हैं उसके वो जाने के बाद क्या किया आपने वो मेरे को बताओ, क्योंकि आपने बाद में जो किया एक ही जीवन में आप दासी पुत्र से नित्य पार्षद बन गए भगवान के, एक ही जीवन उसी जीवन में। और वो पहले अध्याय छठे पहला स्कंद छठे अध्याय का 26वां श्लोक यहां पढ़ता हूं मैं। एक्चुअली नारद मुनि बोलते हैं कि मैंने क्या किया जिसके कारण मैं एक भगवान का नित्य पार्षद बन गया। सुनिए, इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान के दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणप्रद होता है। इस तरह मैं पूर्णतया संतुष्ट विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरने लगा। इसका तात्पर्य सुनिए, नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त भगवान से या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और सारे संसार में विचरण करता है। आपको पूरे संसार नहीं जा रहे देखो तारे को घर के आसपास भी करेंगे चलेगा, और जिससे अन्य लोग भी भगवान की महिमा का श्रवण कर सकें। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रहती, उनकी एकमात्र इच्छा होती है कि वे भगवत धाम को प्राप्त वापस जाएं। और जब वे यह शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें उसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि उनके जीवन का चरम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना रहता है। अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं न ही भगवत धाम जाने का उन्हें अभिमान होता है। उनका एकमात्र व्यापार भगवान के पवित्र नाम यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर अन्यों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। बोले ये एक चीज था मेरे में, नारद मुनि कहते हैं, जिसके कारण प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में अंग्रेजी में लिखते हैं, द लाइफ ऑफ ए सिंसियर डिवोटी इज एक्सप्लेन इन ए नटशेल बाय द पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ नारद मुनि। तो इस तरह से अगर गंभीर रहेंगे तो हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं। प्रभुपाद डिड नॉट स्पीक ए लाइ व्हेन ही सेड दैट इन दिस वेरी लाइफ टाइम ही कैन गो बैक टू गॉड, बट एशां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम। दृढ़व्रता, दृढ़ता आना है तो ये सब जाना चाहिए। पुराने सारे करोड़ जन्मों का कम चाहेगा, पर दृढ़व्रता दो चीज, ईशाम तो अंतगतम पापम और जनानाम पुण्यकर्मणाम, बहुत सारे पुण्य हैं और बहुत सारे सारे पाप चले गए, तब वो दृढ़ता पूर्वक लग सकता है। इसलिए कपिल मुनि भी कहते हैं, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नामस्तुभ्यम अहो बच शुपचो तो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नामतुभ्यम तेपुस तपस्ते जुहु शश्नुरार्या ब्रह्माणु चूर्णाम। जिसके जिह्वा के अग्रभाग पे हमेशा भगवान का नाम लगातार आता रहता है, आप समझ लो कि अगर लगातार आ रहा है तो समझ लेना उसने सारे यज्ञ सारे दान सारे यज्ञ पवित्र स्थान का स्थान स्नान कर लिया है, सब क्रियाएं कर दिया है ऑलरेडी, तभी आज उसके मुंह से हमेशा भगवान का नाम निकलता रहता, नहीं तो निकल ही नहीं सकता। दृढ़व्रता, कोई दृढ़ता से भक्ति कर रहा है तो समझ लेना यह सब किया हुआ है या भगवान की खास कृपा मिल गई है, नहीं तो हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल। यस, एक लास्ट प्रश्न, अच्छे बुरे कर्म के ऊपर निर्भर नहीं है वो भक्ति, भक्ति स्वतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, पर वो एक सिस्टम बनाए उसको सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा, भक्तों की कृपा से मिलती है भक्ति, आपके पुण्य कर्मों से नहीं। तंथास्तु कोटि शतवत्सर प्रगम्यो वायोर्थापि मनसो मुनि पुंगवाना, जितना भी श्रेष्ठ हो नहीं मिलेगा आपको, पर भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा, खास भक्तों की कृपा जब होगी तो मिलती है।
पर ये जो पुण्य कर्म है वो हमारे भक्ति को बनाए रखने में मदद करते हैं। आपका जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखना चाहते हो कि छोड़ना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर, वो हमारा स्वतंत्रता है। पर इन चीजों के ऊपर भक्ति निर्भर नहीं है। हम नहीं कह सकते कि मैं इतना पुण्य किया इसीलिए मिला मुझे। भौतिक पुण्य कर्म पाप कर्म के ऊपर निर्भर नहीं है। सुकृति अलग अलग प्रकार की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं, सुकृति कर्मोन्मुख, ज्ञानोन्मुख, भक्तियोन्मुख सुकृति। कर्मोन्मुख सुकृति कर्म का फल देती है, ज्ञानोन्मुख सुकृति आपको मुक्ति की ओर बढ़ाता है, भक्तियोन्मुख सुकृति जो भगवान के भक्तों के भगवान से संबंधित चीजों से सुकृति, अज्ञात सुकृति, बिना जाने आपने कुछ किया, आपको मालूम नहीं था पर वो भगवान से संबंधित था, वो जो है वो भक्ति की सुकृति देती है। अभी एक गार्डनर है, बगीचा में पानी डालता है, वो उसमें एक तुलसी महारानी का सुंदर ये है पौधा है, सब जगह डालते डालते वो भी डालते, वो ऐसे नहीं डाल रहा कि डालूंगा तो भक्ति मिलेगी या बोलते हैं बहुत मेरे को पुण्य मिलेगा, नहीं हो गया अज्ञात स्वीकृति। ये सब स्वीकृति के बाद भक्तों का संग मिलता है हमको, पर उसमें भी क्या करते हो स्वतंत्र हमारा है, उसके बावजूद भी क्या करेंगे, स्वतंत्रता हमारे पास है, वो स्वतंत्रता को नहीं छीनते भगवान। किसी को एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल गया पर उसका लाभ कैसे उठाओगे वो देखना जरूरी। अनंतस्य हतत्रपह पठन, एक नामानी अनंतस्य, भगवान का अनंत, भगवान का नाम हतत्रप, हतत्रप मीन्स पब्लिक कुछ भी सोचे, दुनिया कुछ भी सोचे, दुनियादारी से दूर होकर नाम जपना। दिव्यानि गुह्यानि कृतानि च स्मरण, दिव्य और गुह्य भगवान के जो कार्यकलाप है उनका स्मरण करना, एक नाम जप, दूसरा भगवान के सुंदर दिव्य और गुह्य लीलाओं का, दिव्यानी गुहियानी कृतानी च स्मरण, और गाम पर्यटन। गाम पर्यटन मतलब पूरे विश्व भ्रमण करना, मतलब प्रचार करना दूसरों को, किस लिए, साइट सीइंग के लिए नहीं, टू स्पीक टू अदर्स, बेसिकली प्रीच। गाम पर्यटन तुष्ट मना, तुष्ट मना मीन्स जिस परिस्थिति में भी इन्हें हमको भगवान ने रखा है उसमें संतुष्ट है, क्योंकि जब संतुष्ट नहीं है या तमोगुण में लेमेंटेशन है या रजोगुण में आकांक्षा, ये नहीं मिला वो नहीं मिला वो नहीं मिला, अरे ये चला जाएगा वो चला जाएगा, तो तुष्ट मना। गतस्पृह मतलब स्पृह, भुक्ति मुक्ति स्पृह यावत पिशाची हृदय वर्तते, भुक्ति मुक्ति स्पृह विहीन ये भक्ता लभते तांक संग अनुरक्ता। ये स्पृह मतलब भुक्ति की मुक्ति की इत्यादि के योग का, मतलब अष्टांग योग का स्पृह। तो नामानि अनंतस्य हततर्प पठन, दिव्यानि गुह्यानि कृतानि च स्मरण, गाम पर्यटन तुष्ट मना, तुष्ट मना मतलब संतुष्ट रहना जिस स्थिति में भगवान ने रखा है, गतस्पृह और कोई भौतिक इच्छा नहीं होना कि ये मिल जाए वो मिल जाए बोल जाए इसलिए भक्ति करना, तुष्ट मना गतस्पृह। कालम प्रतीक्षण, बस अभी जो पूर्ण रूप से शरणागत, जब भगवान ले लेंगे बस। कालम प्रतीक्षण विमदो, स्वाभाविक रूप से अहंकार हो सकता है कि मैं इतना पर्यटन कर रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं इतना नाम, ही इज नॉट प्राउड ऑफ गोइंग बैक टू गॉड, हू नोस इट इज कृष्णाज मर्सी दैट ही विल टेक बैक टू गॉड। विमदो एंड विमत्सर, हाँ निर्मत्सरता से, ये अलग अलग लक्षण बताए गए। 1626 अभिमत्सर प्रभुपाद लिखते हैं, जब भगवत धाम जाना है आपको तो किसी से मत्सरता नहीं करेंगे, तुम लोग इधर ही रहो चलेगा, ये सारा पदवी ये सारा ये निष्ठा क्या बोलते प्रतिष्ठा आप स्वीकार करो, मुझे यहां रहना ही नहीं, मुझे भगवत धाम जाना। देन ए पर्सन बिकम्स नॉन एनवियस। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थाय गौर प्रेमानंद।